ॐ शांति ॐ शांति। मेरे बाबा की आज की सारी मुरली है पढ़ाई पर। पढ़ाई को बाबा ने बहुत जोर दिया है और पढ़ाई में ना स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, और कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, सबसे अच्छा जीवन का जो समय है वो विद्यार्थी जीवन होता है। और उसमें भी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, सबसे अच्छा समय। तो ये संगम युग जो पुरुषोत्तम युग है, ये आपका गॉडली स्टूडेंट लाइफ का समय है। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे इतना नशा चढ़ता है? बाबा के सामने बैठते हैं, बाबा के मुरली सुनते हैं तो नशा खूब चढ़ता है। हाँ, मैं गॉडली स्टूडेंट पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर गए, धंधे दूरी में गए और व्यवहार में गए, परिवार में गए, तो सारा नशा उतर जाता। ऐसा है, होता है, उतर जाता है नशा। या तो दौड़ दौड़ के आते हैं क्लास में, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, परंतु ये नशा उतरना नहीं चाहिए। तो आज बाबा ने बच्चों को बहुत ध्यान खिंचवाया है, ये नशा उतरना नहीं चाहिए। अगर नशा उतर जाता है तो फिर माया आती है, नशा उतर जाता है इसलिए माया आती है। परंतु अगर ये सदा नशा रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो माया ही नहीं आएगी। फिर गॉडली स्टूडेंट को क्या क्या करना होता है, फिर वो भी ध्यान में आएगा। गॉडली स्टूडेंट माना पढ़ाई, हर वक्त में पढ़ाई, फिर केवल पढ़ाई एक बार ही पढ़ा पर उसको बाबा कहते हैं उगाड़ना है, उसका मनन करना है, उसका चिंतन करना है, मंथन करना है, फिर वर्णन भी करना है। खाली मनन चिंतन मंथन है, फिर सेवा भी करनी है। अगर सेवा नहीं करेंगे, सुन तो लिया, पर अगर उसकी सेवा नहीं करेंगे, उसका मनन चिंतन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। तो इसलिए बाबा बार बार यही ध्यान खिंचवाते हैं कि जो सुनते हो उसको, उसका स्वरूप बनो। बाबा ने जो कहा वो स्वरूप बन जाओ तो भूलेगा नहीं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उसका स्वरूप नहीं बनते। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 12/5/2025 है। मीठे बच्चे, गंगा आदि करते हुए सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। गॉडली स्टूडेंट माना स्टडी, पढ़ाई। तो धंधा आदि करते हुए सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। और उसमें फिर नशा कैसे चलेगा? स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं इस नशे में हो। केवल गॉडली स्टूडेंट हूँ ये नशा नहीं है, पर इसमें एडिशन क्या करनी है कि हमको पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान। इस नशे में रहो। मजेदार प्रश्न है, हम चलो स्टूडेंट तो बने, पढ़ाई पर ध्यान भी दे रहे हैं, क्लास में भी आते हैं, लेकिन प्रश्न है जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? हजम करना है ना, अब भोजन तो खा लिया सुबह सुबह, बहुत माजन जैसी खुराक खा ली, पर तो हजम ही नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? हाँ, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है, कैसे हजम होता है उन बाबा बताते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जिन उन्हें सदा रूहानी 下接到的那个晚上五点两个就我们苦辣给你晚上我们一读我们给听我说我们十万我们下的那个我们一时的心的安排सब का कल्याण करते रहेंगे भूख से वही ज्ञान रत्न निकलेंगे अगर हजम ही नहीं हुआ है तो भूख से ज्ञान रत्न नहीं निकलेंगे वो सबका कल्याण करते रहेंगे कल्याण करने के सिवाय दूसरी बात कोई बात करना भी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि कोई ज्ञान की बात के बिना ये उधर यहाँ वहाँ पर चिंतन आदि करता रहेगा तो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा लेकिन छोड़ो ये बातें बाबा की बातें करो तो कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे इससे ये कौन भोग करेंगे जिनको भोजन ज्ञान अमृत में हजम हुआ है ओम शांति अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और ये भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं इस बेहद ड्रामा में हम पाठधारी हैं 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है ये तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने क्यों आया हुआ है बाप राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने ये बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो मधुबन में आते हैं फिर बाबा के सामने मुरली क्लास में बैठते हैं तो महसूस होता है जैसे मैं स्टूडेंट हूँ स्कूल में बैठा हूँ बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो पता नहीं क्या से गोरख धंधों में रहते हैं तो बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो जानते हो ये ऊंच से ऊंच रूहानी स्कूल है रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना स्टूडेंट कहलाए और पढ़ाई उसे याद ना आए तो वो स्टूडेंट कहेगा तो पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना ये भी बच्चा ठहरा कौन बच्चा ठहरा ना ब्रह्मा बाबा भी बच्चा ठहरा इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वो बाप है सब मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप वो है वो आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं रोज समझाते हैं रोज की मुरली आती है ऐसा कभी दिन नहीं आया जब मुरली नहीं हो उस दिन की रोज समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए हैं हम विश्व के मालिक थे देवी देवता थे फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पट पर पड़े कहाँ थे अर्श पर और अभी ये 84 जन्म लेकर पूरा फर्श पर पड़े पट पर पड़े भारत कितना सॉल्वेंट था सारी स्मृति आ गई सारे की सारी स्मृति तो स्टूडेंट को सदा ये स्मृति रहनी चाहिए सारी स्मृति आई है ये भारत की ही कहानी है साथ साथ अपनी भी है ऐसे नहीं केवल भारत की है पर भारत में हम भी हैं तो ये हमारी भी कहानी है तो साथ साथ अपनी भी अपने को फिर भूल ना जाओ ये भारत की कहानी तो जब सुनाते हैं 84 जन्मों की कहानी सीढ़ी पर समझाते हैं तो ये भी केवल समझाना कि ये तो भारत की है पर उसमें हमारी भी यही कहानी है तो बाबा कहते हैं ये सारी अपने को फिर साथ साथ अपनी भी है अपने को फिर भूलने जाओ हम स्वर्ग में राज्य करते थे फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े ये सारा दिन स्मृति में लाना पड़े धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना, कैसे हम विश्व के मालिक थे, पढ़ाई क्या है ये बाबा के, कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए, बहुत सहज है। परंतु ये याद भी कोई को रहती नहीं, बाबा रहना देते हैं, बच्चों को उतना पढ़ाते हैं, लेकिन ये याद भी कोई को रहती नहीं। आत्मा पवित्र न होने कारण याद खिसक जाती है। क्यों याद नहीं रहती, क्यों खिसक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र अभी पूरी है नहीं। हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट है, भगवान हमारा टीचर है, तो बाबा कहते रहते हैं याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर ये बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं, तो सारा दिन ये स्मृति आती रहे, बाप की स्मृति बुलाते हैं। यही भारत था ना, इतना सॉल्वेंट था, इतना ऊंचा था, यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। तो पहले तुम्हारी भी बुद्धि असुरी थी, ये ज्ञान जब तक नहीं था तब तक बाबा कहते तुम्हारी भी बुद्धि असुरी थी। अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है, परंतु परंतु बार बार आता है, परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में पैसा ही नहीं है, भूल जाते हैं, बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तो फिर से देवता बनते हो तो वो नशा रहना चाहिए ना, क्यों भूल जाते हो, ये नशा क्यों उतर जाता है कि हम ही देवता थे, फिर हम ही देवता बन रहे हैं। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे, कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं है कि हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम राज्य करेंगे, हम इतने ऊंचे थे और उसके लिए भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, भूल जाते हैं, नशा ही नहीं चढ़ता है। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है, अब वो कोई चीज हजम हो तब तो शक्ति आई ना, भोजन खाया पर हजम हुआ नहीं तो शक्ति कहां से आएगी। तो बाबा कहते ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है, जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका फिर कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छी नहीं लगेगी। कल्याण उसका, उसको हजम हो गया ज्ञान, तो सोचेगा मैं सबको दू, वो शक्ति आ गई है दूसरों को देने की भी, तो फिर दूसरों का कल्याण करने के सिवाय कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में वो लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए, करते हैं ऐसी अपनी ऐसी बातें अपने से, हम कांटे बन गए, माया ने कांटा बना दिया, अब बाबा आए हैं फूल बनाने तो फूल बनना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। इस नशे में रह तुम किसको भी समझाओ तो झट कोई को तीन लगेगा, नशे से समझाओ, पर पहले वो नशा खुद में हो तब तो उस नशे से समझाएंगे ना। तो बाबा कहते झट उसको तीन लग जाएगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है, हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि हम ही विश्व के मालिक थे, कहना तो कितना सहज है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बन गए हैं, क्या थे और क्या बन गए हैं, कितना गिर गए, सोचो तो क्या हालत हो गई है, क्या थे और कितना गिर गए। हमारे गिरने और चढ़ने का ही ये नाटक है, सारा संसार का नाटक क्या है, हमारे गिरने और चढ़ने का नाटक। ये कहानी बाप दर्श सुनाते हैं, क्योंकि सत्यनारायण की कथा भी यही है, तो सत्यनारायण की कथा में क्या दिखाते हैं, सत्यनारायण की कथा उन्होंने की तो धनवान बन गए, सत्यनारायण की कथा भूल गए तो कंगाल बन गए। तो कौन सी कथा है, नर से नारायण बनने की कथा। तो ये अगर याद है तो नर से नारायण बन जाएंगे, भूल गए तो फिर नारायण से नर बन गए, पतित बन गए। तो बाबा कहते कितना गिर गए, हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है, ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं, वो तो है झूठी कहानी। कहानी में क्या था, उन्होंने कथा की पर कौन सी कथा की वो तो सुनाते नहीं है, वो तो लकड़हारे की कहानी सुनाएंगे और माँ बेटी की और पति सस वो बेटा और दामाद की, मतलब उस प्रकार से सुनाएंगे, पर वो कहानी कौन सी सुनी जो फिर धनवान बने, कौन सी कहानी भूल गए जो फिर से कंगाल बन गए। बाबा कहते वो तो सुनाते नहीं, तो वो है झूठी, ये है सच्ची। वो सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं, समझते थोड़ी है कि हम कैसे चढ़े फिर हम कैसे गिरे हैं, ये बाप ने सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई, ये सारी है, हाँ सारी कहानी है अपने ऊपर, सत्य नारायण की कहानी भी अपने ऊपर है। आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे अब बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं, बच्चे बच्चों से जब बाप यहाँ पूछते हैं तो कहते हैं हाँ बाबा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता है। बाबा क्या कहते थे, सोडा वाटर हो जाता है, चल निकले पांडव भवन से बाहर निकले और जैसे धीरे धीरे नीचे उतरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सारा नशा उतर गया, वैसे हो जाता। बाबा कहते हैं भला नशा है फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। बच्चे खुद समझते हैं, बल हाथ तो उठाते हैं परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके, क्योंकि अगर नशा रहे तो ज्ञान ही सुनाएंगे, नशा रहे तो बुद्धि में वही ज्ञान टपकेगा, पर नहीं है नशा तो फिर और बातों में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके, फीलिंग तो आती है ना, पता चलता है किसको नशा चढ़ता है किसको नशा नहीं रहता। तो बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी फिर तुमने गवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि ये नाटक है ही चढ़ने और उतरने का, बस चढ़ना है फिर उतरना है फिर चढ़ना है फिर उतरना है। हाँ बाबा कौन सा मिसाल देते हैं, हाँ वो दिखाते हैं ना, एक शीख है लोहे की शीख, उस पर मछली ऊपर है फिर धीरे 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 वो नीचे उतरती है, फिर ऐसे करो तो फिर ऊपर चढ़ गई फिर धीरे 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 नीचे उतरती है, तो ये भी तो ऐसे ही है ना। तो बाबा कहते हैं तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि ये नाटक है चढ़ने और उतरने का, आज राजा है कल उसको उतार देते हैं। दुनिया में आजकल ऐसे बहुत होता है, मिलिट्री रूल आ जाता है, मिलिट्री का शासन, प्रेसिडेंट को भी कैसे उनको निकाल देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पढ़ती है जिसका रेस्पॉन्ड दिया जाए तो कुछ समझे, ये नाटक है। हाँ अगर ऐसे बताओ भाई कैसे ये नाटक है, इस नाटक में ये सब बातें होती है, अभी सबकी गिरती कला है, ये नाटक है, ये याद रहे तो भी सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज से 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आया था और आकर क्या किया था, आकर के राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी महाभारत लड़ाई माना, जब भगवान भी हाजिर है राजयोग भी सिखा रहे हैं और फिर बच्चे पावन भी बन रहे हैं फिर राजाई भी ले रहे हैं, तो ये है बाबा कहते हैं ये लड़ाई का समय है, आकर राजयोग सिखाया था लड़ाई भी लगी थी, अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं। ये है पुरुषोत्तम युग, कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है, सत्युग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, संगम युग को बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम युग है क्योंकि तुम बनते हो ना, तो बन गए सत्युग में देवता। कलयुग के बाद ये पुरुषोत्तम युग आता है, कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, और सत्यों को भी नहीं कहेंगे पुरुषोत्तम युग, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का युग। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं उनके बीच का है ये संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से फिर पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है, सारा चक्र लग जाता है नई से पुरानी होने में। अब यह है संगम युग, सत्ययुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वो है नहीं, अब वो है नहीं, बाकी अनेक धर्म आ गए। जो सत्ययुग का देवी देवताओं का राज्य था वो है नहीं, बाकी सब धर्म आ गए हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में रहता है, बहुत है। हाँ, फिर बाबा थोड़ा समझा के फिर बच्चों पर आते हैं, बहुत है जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं, बहुत पवित्र बनते हैं। अभी चलो हाँ, पवित्र बनते हैं, बाबा के बन गए, पवित्र बनते हैं, फिर क्या होता है, परंतु पढ़ाई नहीं करते, पवित्र रहते, चलो बाबा ने कहा पवित्र रहना, लेकिन पढ़ाई भी तो साथ साथ चाहिए ना, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं, फिर माया में फंस जाते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती है, ना कहिए ना बस मैं तो पवित्र हूँ ना, बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूँ ना बस, परंतु श्रीमत में पढ़ाई भी तो है, ऐसे नहीं श्रीमत पर चल रहा हूँ, पवित्र रह रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई कितनी करता हूँ, मुरली पर कितना ध्यान है, कितना उसको मैं धारण कर रहा हूँ, कितना हजम कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती, ऐसे तो सन्यासी भी बहुत है, पवित्र रहते हैं क्या बड़ी बात है, ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वो सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं ना, वो सन्यासी हूँ मैं बिल्कुल, दुनिया से मेरा पूरा नाता टूटा हुआ है, ये अगर बुद्धि में न हो तो सन्यासी भी वापस चले जाते हैं अपने लौकिक में। फिर शादी आदि जाकर कर लेते हैं, तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम स्कूल में बैठे हो, हाँ भूलो मत, तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गंवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनो, पावन जरूर बनना है, जितना याद जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है, वो निकले कैसे, तो योग अग्नि में पड़ेगी, पड़ेगा सोना तब खाद निकलेगी। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है, हम क्या बन गए हैं, हाँ देखो तो सही कैसी हालत हो गई है हमारे भारत की, हम क्या बन गए हैं। बाप तो ऐसे नहीं कहते हम क्या थे, हाँ शिव बाबा तो ऐसे नहीं बनते, क्या सत्ययुग में हम देवता थे, शिव बाबा तो नहीं देवता बनते हैं, ना असुर बनते हैं, पर हम बनते हैं, क्या थे और क्या बन गए। तो बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तो मनुष्य ही कहते हो कि हम देवता थे, भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, ये कोई नहीं जानते, ये तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं, वो लिबरेटर है, गाइड है, मुक्ति दाता है, घर ले जाता है, पर वो आता कब है, जो आकर के मुक्त करे और घर ले जाए, तो वो आता कब है ये तो पता नहीं, तो ये पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो जरूर भारत में ही री इंकारनेशन होता होगा, सबसे प्राचीन भारत है तो भगवान का अवतरण भी स्वरूप भारत में ही होता होगा, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, जरूर फादर यहाँ आता है, कहते भी हैं भागीरथ तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, भाग्यशाली रथ में आया होगा, तो भागीरथ भी यहाँ का ही गायन है, तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाइए, घोड़ा गाड़ी दिखाइए। आप जाएंगे ना कुरुक्षेत्र में तो इतना बड़ा घोड़ा, इतनी बड़ी गाड़ी, और फिर अर्जुन और श्री कृष्ण कैसे दोनों खड़े हैं बस लड़ाई के लिए, और भगवान ज्ञान दे रहा है, इतना बड़ा वो स्टैचू जैसा है। तो बाबा कहते हैं फिर घोड़ा गाड़ी भी दिखाइए, कितना फर्क है, कहाँ भगवान किस रथ में आते हैं और कहाँ वो घोड़ा गाड़ी दिखाया है, कितना फर्क है। श्री कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता ही नहीं है। ये शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आते हैं इसका किसी को पता ही नहीं है, और वो केवल श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ दिखाते हैं। तो मेरा किसको पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, ब्रह्मा रथ पर आते हैं, इनको भी भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो फिर विष्णु, चित्र में कितना क्लियर है, त्रिमूर्ति के ऊपर फिर शिव है। ये शिव का परिचय किसने दिया, क्योंकि दुनिया में त्रिमूर्ति तो दिखाएंगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो इनके ऊपर शिव है, वो शिव दिखाते हैं, तो इसीलिए वो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव है। अब ये शिव का परिचय किसने दिया, बाबा ने ही बनवाया है ना, कि कैसे त्रिमूर्ति के ऊपर शिव है, ये शिव बाबा ने बनवाया चित्र। अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये भी बच्चों को समझाया है। कहां 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, और कहां 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं, और ब्रह्मा सो विष्णु कहां, ब्रह्मा सो विष्णु एक सेकंड में बनते हैं ब्रह्मा सो विष्णु। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। तो पहले पहले समझाना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था जरूर, ये भूलना नहीं चाहिए, भारत स्वर्ग था जरूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया था भारत को। ये चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, तो समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है, शिव बाबा को भी शौक है, तो ब्रह्मा बाबा को भी शौक है, तो बाप को भी शौक है। तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है। अब शिव बाबा डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से सुनाएंगे और बच्चे सुनाएंगे किसको, तो दोनों में फर्क तो रहता है ना। और बाप के आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फर्क तो जरूर रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने के लिए, क्योंकि बाप सुनाते हैं हम, बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं। चकार मुरली अगर आप टेप में भी सुनेंगे ना, कितनी बार बाबा बच्चे 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 कहते हैं, पर लिखत में इतना नहीं देते, एडिट कर देते, क्योंकि अगर लिखत में देते ना बच्चे बच्चे बच्चे, तो पूरा आधा पौना पेज तो क्या पूरी मुरली बच्चे 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 इतना हो जाए। तो बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, भाई भाई का इतना असर नहीं रहता, कि बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं तो उसका असर रहता है बच्चों पर। भाई भाई कहेंगे तो वो बच्चे बच्चे तो नहीं कहेगा, भाई भाई ऐसे कहेंगे, तो भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है। यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं, तो इसको मेला कहा जाता है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, बाप के सामने बैठे बाबा बच्चे बच्चे कह के समझाते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि बेहद का बाप ये कहते हैं। हम उनको अभी ये बाबा दूसरी पॉइंट सुनाते हैं, समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे, तो बच्चे समझ जाते हैं ना, ये तो बेहद का बाप कहते हैं तो हम उनका नहीं मानेंगे। तो बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। बाबा तो ऐसे कह सकते ना कि तुम इनका नहीं मानेंगे, तुम पावन नहीं बनेंगे। आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, और कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, हम बाबा जो कहते हैं हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। तो बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पति पावन बाप हूँ, तो बाप की समझाने और आत्माओं की समझाने में, यानी बाप की और बच्चों की समझाने में कितना फर्क है। बाप समझाएंगे तो डायरेक्ट समझाएंगे, और फिर बच्चों को लगता है दिल में, तो फिर बच्चे बाबा कहते बाबा हम क्यों नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे अगर किसी को कहेंगे कि नहीं ठीक है देखेंगे सोचेंगे, फर्क तो पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं, बाप की समझाने और आत्माओं की यानी बच्चों की समझाने में कितना फर्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको झट टच होगा। अब नए आए बाबा के सामने और बाबा ने उनको सुनाया, तो यहाँ की आत्मा है तो उनको झट टच हो जाएगा। वो ये कहते तो ठीक है, तो जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा भी नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पति पावन तो एक बाप ही है। बाप आत्माओं को कहते हैं, बाबा डायरेक्ट आत्माओं को कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, तुम कितने पतित बन गए हो, इसीलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये रावण राज्य खत्म होना है। मुख्य बात है ही पावन बनने की, मुख्य बात ही पावन बनने की है। स्वर्ग में विष तो होता ही नहीं है, विष होता ही नहीं है सब चीज में, इसलिए अभी से छोड़ दो। जब कोई आते हैं तो उनको ये समझाओ कि बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। सबको समझाओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। मन मना भव अक्षर याद है ना, तो बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार है। जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं, बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं। नहीं तो कैसे कहे कि माँ एकम याद करो। अब शिव बाबा को बच्चों को कहना है माँ एकम याद करो, वो शरीर लेंगे तभी तो उसके मुख से कहेंगे ना माँ एकम याद करो। नहीं तो कैसे कहे कि माँ एकम याद करो, देह के सभी संबंध छोड़ो। जरूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता अब प्रैक्टिकली है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। किसी को समझा, वो बेहद का बाप ऐसे ब्रह्मा द्वारा कहते हैं और हम बेहद के बाप की मानते हैं। वो कहते हैं पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुराने देह के अभिमान को छोड़ो। भगवान कह रहे हैं हमें कि ये सब छोड़ो, पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुराने देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ऐसे सबको समझाओ। तो बाप से बेमुख करने वाला मुख्य गुण है। अब सारी धारणा की बात, हाँ बाबा बच्चों को कहते हैं बाप से बेमुख कौन करता है, रावण तो करता है, पर रावण में भी कौन सी बात है जो बाबा से बेमुख करती है। बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का पर चिंतन करना। कभी सोचा, हाँ ये बाबा से बेमुख कर देगा हमको अगर हम दूसरों का पर चिंतन करते रहेंगे, ऐसा करता ऐसा करता ऐसा करता, मतलब नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर बाबा से दूर कर देंगे। एक दूसरे का पर चिंतन करना ये बाबा से बेमुख करने का रूप है। इवन बातें सुनना और सुनाना, तो बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इवन बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना। बाबा इसको क्या टाइप क्या नाम देते हैं, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको, ना दोनों में लड़ाना। बहुत बहुत ऐसे होते हैं, इसकी कोई खराब बात उनको सुनाई दे, उनकी खराब बात इनको सुनाई, अच्छा वो मेरे लिए ऐसे कहता है, अच्छा वो मेरे लिए ऐसे कहता है, बस जैसे आपस में सामने आमने सामने आएंगे तो लड़ना चालू कर देंगे। इसको कहते धोतीपना, इसको बाबा ने एक बार कहता कैंची बनाना। कैंची क्या करती है, एक को दो करती है, और सुई धागा क्या करता है, दो को एक करता है। तो दो को एक करना है या एक को दो करना है, अगर एक को दो करते माना पर चिंतन माना धोती बना, और दो को एक करते मिलाते हैं तो ये है बाबा कहते ये है सच्ची सेवा। तो बाबा कहते हैं इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये धोतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना, इस समय सब विपरीत बुद्धि है, भगवान से विपरीत बुद्धि है, तो सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना इसको धोतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं ये धोतीपना छोड़ो, तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं धोतीपना छोड़ो। तो आत्माओं को क्या बताओ कि हे सीताएं तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर, ये मैसेज दो कि बाप ने कहा है मुझे याद करो। बस यही संदेश सबको दो कि भगवान कहते हैं अब मुझे याद करो, बस इस बात के सिवाय बाकी सब है धोतीपना। दुनियावी बातें संसारी बातें इसकी बात उसकी बात, बाबा कहते हैं ये सब है धोतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धोतीपना छोड़ दो, सभी सीताओं का एक राम से योग जुड़वाओ, तुम्हारा धंधा ही ये है, सबका बुद्धि योग एक राम बाप से जुड़वाना। बाबा कहते यही तुम्हारा धंधा है, बस यही पैगाम देते रहो। बाप आया हुआ है, कहते हैं क्या कहते हैं बाप, तुमको गोल्डन एज में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है, जंगल में बैठे हो ना, हम दुनिया एक तरफ है, दुनिया में सब जंगल ही जंगल है, कांटों का जंगल है, तो जैसे वनवास में बैठे हैं, जंगल में बैठे हो ना, तो वन बाबा कई बार कहते हैं मधु वन, तो वन है ना, ये वन भी एक जंगल है, चारों ओर तो देखो जंगल ही जंगल है ना, तो जंगल में बैठे हो ना, वन जंगल को कहा जाता है। कन्या की भी जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, वन में बैठती है माना साधारण कपड़े पहनती है, हल्दी लगाती है, तेल लगाती है, एकदम जैसे बहुत सिंपल, लेकिन अगले दिन शादी होती है तो कैसे सज धज जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम भी अभी वनवास में हो, वन में बैठे हो, कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। एक बाप को याद करो जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, क्या होगा उनको क्या मिलेगा? जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वो, हाँ बाबा कहते हैं, वो तो महल में जाएंगे। सुना, वो महल में जाएंगे जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है। बाकी विपरीत की का तो वनवास है, वो फिर सत्युग में नहीं आएंगे। विपरीत बुद्धि है भगवान से, फिर वो द्वापर कलयुग में आएंगे, फिर वो वनवास में है, वो महल में नहीं जाएंगे। जंगल में वास है, हाँ जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली है उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए हो, जंगल में आ गए, कलयुग में आ गए तो ये जंगल है, तो वनवास में आ गए क्योंकि बाप को भूल गए। तो एक तरफ है वनवास और दूसरी तरफ है गार्डन वास, बगीचा वास, जंगल वास और फिर बगीचा वास। तो वनवास और गार्डन वास, बाप का नाम ही है बागवान, बागवान है वो, बाग बगीचा बनाने वाला बागवान। परंतु जब कोई की बुद्धि में आए ना ये बातें, भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है, सब जंगल में पड़े हैं, फिर गार्डन में चलते हैं, तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है क्या? हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, तो क्या होगा? मेरे साथ प्रीत रखो। परंतु फिर बाबा परंतु कहते हैं, बाबा से प्रीत रखो बाबा कहते हैं, परंतु फिर भी भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो और बच्चे भूल जाते हैं, तो बाप उलहना देते हैं, उलहना मिलता है ना, कंप्लेंट करते हैं, तो बाप उलहना देते हैं, तुम मुझ बाप को कहां तक भूलते रहेंगे? बार बार बाबा कहते मुझे याद करो और बच्चे भूल जाते, तो कहां तक भूलते रहेंगे, कहां तक भूलते रहेंगे? फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अगर बाबा को भूलते रहेंगे तो गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने से पूछो हम कितने समय बाबा को याद करते हैं, हम जैसे कि अब कितना समय याद करते हैं, तो कितना समय याद करना चाहिए? जैसे कि हम याद की अग्नि में पड़े हैं, ऐसे अपने को समझो, याद की अग्नि में पड़े हैं जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है शिव बाबा, सबसे फर्स्ट क्लास माशूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। बाबा कहते हैं कहा थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना, ट्रेन में भी होता है ना, अब थर्ड क्लास में जाओ, पैसेंजर ट्रेन में जाओ, वहां रिजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं है, बस कहीं भी जगह मिले बैठ जाओ, भीड़ में बैठ जाओ या खड़े हो जाओ, तो जैसे बकरियों की भीड़, बकरियां होती ना वो कैसे वो एकदम इस छोटे से झुंड में होती है, और कोई फर्स्ट क्लास एसी, एसी में भी फर्स्ट क्लास वो ट्रैवल करे तो वो राजा की तरह है। तो बाबा कहते हैं कहां थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना और कहां एयर कंडीशन में ट्रैवल करना, कितना फर्क है। हाँ, यहाँ जब होता है ना, ये घरासिया लोग आते हैं, गांव-गांव से आते हैं यहाँ अकेले, तो कैसे आते हैं, हम जाते हैं नीचे देखते हैं उनको, ट्रक में भर भर के आते हैं, तो जैसे जानवरों को डालते हैं ना वैसे मनुष्य भी ऐसे भर भर के ट्रक में आते हैं, तो हमको कई बार लगता है अगर ये पलट गई ट्रक तो क्या होगा, कैसे कुछ भी हो सकता है, इतना फास्ट आते हैं और कितने उसमें होते हैं, तो बिल्कुल बकरियों की तरह। तो कहा थर्ड क्लास में बकरियों मिसल ट्रैवल करना और कहा एयर कंडीशन में, कितना फर्क है। ये सब विचार सागर मंथन करना है तो तुमको मजा आएगा, विचार सागर मंथन करो तो मजा आएगा। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, बाबा कहते मैं भी भूल जाता हूँ, सारा दिन ख्यालात चलती रहती है। तो तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है, एक बाबा की याद के सिवाय और कोई याद न आए, तो तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, किसी को भी एक राम यानी बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना पर चिंतन करना ये धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। कैसे, कोई रॉन्ग भी है लेकिन उसकी बात को समा लिया तो हाँ, उसको रियलाइज होगा तो अपने आप बदल जाएगा। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में न आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वो अलबेले हो जाते हैं। अब किसी ने किसका पर चिंतन किया और हमको सुनाया, आज देखा पर चिंतन करके मुझे सुनाया, फिर हम उसके प्रभाव में आ गए तो अलबेले हो गए। अपने पुरुषार्थ में भी वो अलबेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ ये जिम्मेवारी उठा लो, क्या जिम्मेवारी उठाओ कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। वो रॉन्ग कर रहा है और तो मुझे रॉन्ग नहीं करना है, मुझे राइट के मार्ग पर रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय क्या करो, उसको सहयोग का नोट दो। स्लिप देते ना तो उनको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो क्या करना होगा। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। कैसे, वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो, उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म होती जाती है। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले ब्रह्मचारी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो, हाँ, आज 12 मई है, हमारे बहुत ही स्नेही अति प्रिय भ्राता जगदीश भाई का दिन है। 2001 12 मई को जगदीश भाई अव्यक्त हुए थे, पूरे 24 साल हो गए। तो जगदीश भाई को कैसे भूल सकते हैं? जिन्होंने जगदीश भाई को देखा था वो हाथ उठाएं। अच्छा, बहुतों ने देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ उठाएं। अच्छा, ये सब बाद में आए होंगे ज्ञान में। ये सारा जो लिटरेचर आप पढ़ रहे हो ये सब जगदीश भाई ने लिखा है। जो विंग्स की शुरुआत हुई वो भी जगदीश भाई ने की। कितने सारे प्रोजेक्ट्स जगदीश भाई ने किए, पूरा लिटरेचर देखो, कोई भी किताब पढ़ो तो कौन है लेखक? जगदीश चंद्र हसीजा। तो हमारे बहुत ही अनन्य रत्न थे, बाबा उनको बहुत प्यार करते थे। बाबा कहते थे इनकी बुद्धि 7 फीट लंबी है, 7 फीट लंबी, माना इतने इंटेलिजेंट थे। सारे शास्त्र भी पढ़े थे, सब कुछ पढ़ाई की, प्रोफेसर थे पहले ज्ञान में आने से पहले। लेकिन बहुत प्रश्न होते होंगे उनके मन में, और जैसे बाबा के पास आए तो हमारी जो पुरानी बहनें हैं दादियां, वो उनको कोर्स कराती थी। उस समय जानकी दादी थी, कूंज दादी थी, रुक्मणी दादी थी दिल्ली में, और बहुत और भी दादियां थी। तो वो इतना उनको परेशान करता था प्रश्न 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 पूछ करके। फिर कई मुझे मधुबन जाना है, तो दादियों ने उनको बहुत, उनकी बहुत परीक्षा ली, मधुबन जाना है, प्रश्न प्रश्न इतना कर रहा है तो बाबा से भी करेगा, तो बहुत प्रश्न किया। तो फिर परीक्षा ली, मधुबन जाना है तो ये लिखो, ये लिखो, 108 बार लिखो, ये करो, और सब उसने किया। लेकिन मुझे मधुबन जाना है, वो नशा उनको चढ़ गया, भगवान से मिलना है। और बाबा को उन्होंने लिखा, बाबा ये एक ऐसा भाई है, इतना प्रश्न कर रहा है, इतना प्रश्न कर रहा है, और ये कहता है मधुबन आना है। बाबा ने तुरंत लिख दिया जवाब, उनको भेजो मधुबन। और सच वो जैसे मधुबन आया, बाबा को देखा, उनको एकदम बाबा से लाइट आई, लाइट दिखाई दी, और एकदम से पिघल गया। और फिर देखो, और जब बाबा का बना तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, वैसे एक बाबा दूसरा ना कोई। और इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतनी सेवा, बस उसके कारण ही कितना ये संस्था कितना आगे बढ़ी, बहुत कुछ है। तो इसकी पूरी कहानी है जगदीश भाई की। तो आज उनका विशेष दिन है, बहुत याद करते हैं। इतने क्लासेस कराई जी, ये सुनो जी, आप कविता सुनाएंगे जगदीश भाई के बारे में? आइए आइए आइए, हाँ जगदीश भाई के बारे में कविता सुनाएंगे। आइए भाई सुनाओ। कल से भट्टी भी शुरू हो रही है, कल से ना, हाँ कल से भट्टी। कोई आ गए क्या भट्टी वाले? अभी तक आए नहीं। कैथल, कैथल हरियाणा, उनकी भट्टी है। और आज हमारी कविता बहन जा रही है, छुट्टी ले रही है, बहुत दिन रही कविता बहन हाथीला और सबको छुट्टी ले रही है। बहुत प्यार से सेवा की, भट्टी संभाली अच्छी तरह से, और आज फिर दूसरी बहन आएगी भट्टी संभालने, हमारी विजया बहन। कहाँ से? अरे वो डूंगरपुर, डूंगरपुर की विजया बहन आ रही है, वो भी 15 दिन रहेगी और 2 भट्टियां संभालेगी। तो ये भी देखो ड्रामा अनुसार कैसे हमारी वरिष्ठ बहनें आती है, और यहाँ मधुबन का भी आनंद लेती है, भट्टी भी संभालती है, और बहुत प्यार से सेवा भी करती है। अभी हम सुनेंगे जगदीश भाई के प्रति कविता है।
ओम शांति। प्रिय जगदीश भाई जी के साथ एक लंबा समय रहने का भाग्य मिला, वो समय समय पर बहुत याद करते रहे, चाहे वो दिल्ली के कार्यक्रम होते रहे, मधुबन में होते रहे, और जो बाबा के गीत बने उनका करेक्शन करना, उनको देखना। दादी कहा करती थी, जगदीश भाई को दे दो कॉपी, जगदीश भाई चेक कर ले। तो जब मैं उनको कहते थे, भाई साहब ये गीत लिखे हैं आप जरा देखें तो बहुत अच्छा है, कहा गीत तो अच्छे ही है, बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन समय समय पर उनकी सूक्ष्म दृष्टि इतनी अच्छी थी कि वो गानों को इतना बताते थे गहराई से। उदाहरण के लिए एक लाइन में कहता हूं, जब ये गीत बना, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है। तो ये गीत जब बना तो जगदीश भाई ने कहा, क्लास में पूछा, ये गीत बजा बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा, आप सबको कैसा लगा? सबने कहा बहुत अच्छा है। तब उन्होंने कहा, इसमें एक लाइन आती है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है। अब दीपक में बाती है इसका मतलब तो ये होता है कि या तो परमात्मा में आत्मा है या तो आत्मा में परमात्मा है, तो हमारे ज्ञान से ये पहली कम करता है। तो जब आके सबने बताया तो मैंने जगदीश भाई को कहा मैंने तो ऐसे कह दिया था भाई, कोई ऐसी बात नहीं होती है। मैंने कहा, भाई साहब आपने जो ये कहा कि दीपक संग बाती है, अगर कह दिया जाए दीपक संग बाती है तो यानी परमात्मा के साथ आत्मा है, तब तो बात भी बन जाती है, लेकिन दीपक में बाती है ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो आपकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि हमको समय समय पर बड़ी प्रेरणा देती है कि कैसे हम करें। ऐसा ही दूसरा भी था, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। तो मैंने तो लिख दिया, गीत की तरफ ज्यादा ध्यान गया नहीं। उन्होंने कहा कि जब आपका प्यार बाबा बरसता रहे, जब बारिश होगी और बरसात होगी तो सितारे कैसे जगमगाते रहेंगे, फिर तो वो संभव नहीं है। तो मैं उनकी बात को सुन के इतना अच्छा लगा कि वाह कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। ये तो हो सकता है कि आपका प्यार बरसता रहे, हम उसे भीगते रहें, आनंद लेते रहें, तब तो बात एक बात बनती है। तो ऐसे करके सूक्ष्म दृष्टि उनकी समय समय पर गीतकार के रूप में हम जो बने, तो इनमें भाइयों का, दादी जी का, इन सबका बड़ा बहुत योगदान रहा। उन्होंने सिखाया कि लिखा कैसे जाए, बात कैसे किया जाए, कैसे रहा जाए, ये जीवन के लिए हमारे आदर्श बने जिनको देख करके हम सब आगे बढ़ते रहते हैं। तो याद है, तुम्हें याद करते भाई, तुम्हें याद करते भाई, बाबा की याद आई, तुम्हें याद करते भाई, बाबा की याद आई, सेवा तुम्हारी ऐसी जा सकती ना भुलाई, प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई, प्यारे जगदीश भाई, वरदानों से ही जन्मे, वरदानों में पले थे, वरदानी बन के सबके तुम साथ में चले थे, फिर आगे बढ़ चले हो करने को अगुवाई, प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई, स्तंभ ज्ञान का बन दिया यज्ञ को सहारा, लिख कर के ज्ञान प्रभु का नित नित बहुत निखारा, प्रत्यक्ष करने प्रभु को संजय की पदवी पाई, सेवा तुम्हारी ऐसी जा सकती ना भुलाई। प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई, बनकर दधीच तुमने सब हड्डियां की अर्पण, तुमसे ही पांडवों का हुआ था शुरू समर्पण। है प्रीत तो चले जो तुमने राहें दिखाई, सेवा तुम्हारी ऐसी जा सकती ना भुलाई। प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई, अनुशासन आज्ञा पालन तप त्याग था निराला, सम्मान बहनों खातिर बेहद था मन में पाला, कहते नहीं थे केवल सब करके भी सिखाई, सेवा तुम्हारी ऐसी जा सकती ना भुलाई। प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई, बाबा के लाडले थे तुम दादी के दुलारे, बाबा के लाडले थे तुम दादी के दुलारे, परिवार को थे प्यारे पर उतने सब से न्यारे, तन से विदा भले पर मन से नहीं विदाई। प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई, तुम्हें याद करते भाई बाबा की याद आई, सेवा तुम्हारी ऐसी जा सकती ना भुलाई। प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई, प्यारे जगदीश भाई, मीठे जगदीश भाई।